नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक पेश किया। ये विधेयक खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेन देन पर रोक लगाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। आज देशभर में उन्नत डाक तकनीक का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस स्वदेशी तकनीक से कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आज हरियाणा चंडीगढ़ सहित देशभर में राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। हरियाणा में नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त बिजली की हिस्सेदारी लगभग 4961 मेगावाट तक पहुंची। और हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। अब समाचार विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया।
Speaker sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2045 be taken into consideration.
इस विधेयक का उद्देश्य ई खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना तथा पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाना है। इसके अंतर्गत समन्वित नीतिगत सहयोग, रणनीतिक विकास और विनियमन के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह विधेयक देश की सुरक्षा और संप्रभुता तथा वित्तीय प्रणाली की अखंडता की सुरक्षा करेगा और जनहित में एक सम्मान और राष्ट्र स्तरीय वित्तीय ढांचा स्थापित करेगा। इस विधेयक में पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने, संचालन करने या प्रोत्साहन करने पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है। ऑनलाइन गेम से जुड़े कानून के उल्लंघन पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मां गंगा की तर्ज पर यमुना नदी को भी स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए CWC हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। यह समिति यमुना नदी की सफाई के साथ साथ इससे संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान पर भी कार्य करेगी। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बैठक में केंद्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने के बाद योजनाएं धरातल पर उतरने का कार्य निरंतर जारी है। यमुना नदी की स्वच्छता के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। नदी में गिरने वाले गंदे पानी के नालों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के माध्यम से स्वच्छ करके नदी में प्रवाहित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना नदी की सफाई के अभियान के तहत अब तक 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के तहत यमुना को स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जाएगा। यमुना की स्वच्छता दोनों सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल जिले के पल्ला गांव से यमुना नदी में गिरने वाली ड्रेन का BOD स्तर 80 है। इस पानी को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के ओखला में यमुना नदी के पानी के BOD स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए 44 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं और इसके अतिरिक्त 9 और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। आज से देश भर में उन्नत डाक तकनीक का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस स्वदेशी तकनीक का विकास डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ने किया है। ये तकनीक मेघराज 2.0 क्लाउड पर काम करती है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य न केवल डाक सेवाओं को अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है बल्कि ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना भी है। हिसार डाकघर के अधीक्षक हरीश कुमार ने कहा कि ग्राहक अब मोबाइल ऐप के माध्यम से विभिन्न डाक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
APT 2.0 है, ये डाक विभाग का डिजिटल क्रांति की तरफ एक एडवांस कदम है और इसका उद्देश्य डाक को अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है और इसके माध्यम से जो कस्टमर्स है UPI के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से भी वो भुगतान कर सकते हैं और इससे जो कैश ट्रांजेक्शन्स है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा जो डाक डिलीवरी होती थी उसमें रियल टाइम अपडेट मिलेगा और क्योंकि इसमें GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम है। इसके अलावा जितनी भी सेवाएं हैं APT 2.0 के एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिलेंगी।
उन्होंने कहा कि इसमें QR कोड से भुगतान करने, OTP से डिलीवरी लेने और 10 अंकों वाले डिजिपिन का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। इससे कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। श्री हरीश कुमार ने बताया कि ये प्रणाली ग्रामीण शाखा डाकघरों में भी लागू की जा रही है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाएं सुलभ होंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। आज हरियाणा, चंडीगढ़ सहित देश भर में राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अक्षय ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके उपयोग का प्रोत्साहन करना है। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि अक्षय ऊर्जा विभाग इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में बिजली की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त बिजली की हिस्सेदारी लगभग 4,961 मेगावाट है, जो स्थापित क्षमता का 34.68% है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते हरियाणा में कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में कुसुम योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए 1,62,000 से अधिक सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया,
सोलर मॉडल विलेज एक कॉम्पिटिटिव स्कीम है जिसमें कि हर जिले में कंपटीशन कराया जा रहा है। हर गांव को 6 महीने का समय दिया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा अक्षय ऊर्जा को अपनाएं। जिस गांव में सबसे ज्यादा अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है उस गांव को चयन किया जाता है, उसे मॉडल सोलर विलेज के रूप में स्थापित किया जाएगा। 22 ऐसे गाँव पूरे राज्य भर से सेलेक्ट होंगे जिन्हें 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार से मिलेगी, जिससे कि फर्दर वो अपने गाँव में अक्षय ऊर्जा के यंत्र लगा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पराली जलाने की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, जींद जिलों में कुल 49.8 मेगावाट क्षमता की पराली आधारित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की हैं।
हमारे विभाग के द्वारा बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के 4 प्रोजेक्ट्स फैसिलिटेट किए गए हैं, जो कि कुरुक्षेत्र, करनाल, फतेहाबाद, जींद, इन इलाकों में चल रहे हैं। कुल मिलाकर 50 मेगावाट के ये प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें लगभग 5,00,000 मेट्रिक टन की पराली से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।
इन परियोजनाओं से प्रतिवर्ष लगभग 5,12,000 मेट्रिक टन पराली की खपत होती है। उन्होंने हरियाणा वासियों से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाकर प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने में सहयोग देने की अपील की।
मैं सभी हरियाणा वासियों के लिए अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करें और जो पीएम सूर्य घर योजना है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और मुफ्त बिजली अपने घर में।
हरियाणा सरकार ने राज्य के निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा गहन विचार विमर्श करने के बाद एक नीति बनाकर राज्य की विभिन्न सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा आज इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। इस नीति के अनुसार कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 1% तथा कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को छोड़कर ग्रुप सी के पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। चंडीगढ़ की पर्यावरण सोसाइटी द्वारा अक्षय ऊर्जा दिवस पर चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट सरकारी कॉलेज में नई जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ अक्षय ऊर्जा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसाइटी द्वारा प्रायोजित इस समारोह में टी शर्ट पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग और जस्ट ए मिनट सत्रों सहित कई अंतर कॉलेज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक पेश किया। ये विधेयक खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। आज देश भर में उन्नत डाक तकनीक का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस स्वदेशी तकनीक से कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आज हरियाणा, चंडीगढ़ सहित देश भर में राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। हरियाणा में नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त बिजली की हिस्सेदारी लगभग 4,961 मेगावाट तक पहुंची और हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।